एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
Hallelujah.
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
सर्मन नंबर 292, गॉड्स पावर इन नेचर, प्रकृति में ईश्वर की शक्ति। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम आज परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे, हमें समझ शक्ति दे, ताकि हम तेरे वचन को, तेरे संवाद को समझने सके और तेरे राह में चलने सके। मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तो विशेष आशीष दे, ताकि वे तेरे वचन को सुन करके समझ सके और तेरे राह में चलने सके। मेरे संग पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है प्रकृति में ईश्वर की शक्ति। आइए हम भजन संहिता 19 का एक पढ़े, जहां लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्यारो, प्रकृति के माध्यम से हम न केवल ईश्वर की रचनात्मक गतिविधियों और उनकी पालन पोषण शक्ति को देखते हैं, बल्कि उनके प्रेम, ज्ञान और दया के बारे में भी सीखते हैं। प्रकृति में रहने से हम ईश्वर के करीब आते हैं और शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से स्वस्थ होते हैं। प्रकृति में ईश्वर से हमें मिलना है। सदियों से कई दार्शनिक ईश्वर को उसकी सृष्टि मानकर भ्रमित होते रहे हैं, जैसा कि हम देखते हैं रोमियो 1 का 18 से 25 में। कुछ मामलों में, जैसे सर्वेश्वरवादी दर्शन में, ईश्वर को प्रकृति के बराबर भी माना जाता है। इसके बावजूद हम उसकी सृष्टि के माध्यम से ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ऐसा कौन है जिसने गाड़ी चलाते समय या यूं कहे कि राष्ट्रीय पहाड़ों पर पैदल यात्रा करते समय या चट्टानी तट पर प्रचंड लहरों की टकराहट देखते समय विस्मय और किसी महान शक्ति की उपस्थिति का अनुभव ना किया हो? ऐसा कौन है जिसने उस सुकून भरी शांति का अनुभव ना किया हो जो किसी कलकल करती हुई नदी के किनारे आराम करते समय या ऊपर शाखाओं पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनते समय हमें मिलती है? ऐसे समय में हम सृष्टिकर्ता की शक्ति के साक्षी बनते हैं और अपनी आत्मा को शांति का अनुभव कराते हैं। प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। प्यारों, खासकर जब हम पर्दे के पीछे छिपे सृष्टिकर्ता को पहचानते हैं। सभी के सृष्टिकर्ता यीशु ने अक्सर प्रकृति से शिक्षाएं ली और लोगों को उससे शिक्षाएं दी। इस पाठ में आज हम प्रकृति से प्राप्त होने वाले कुछ लाभों पर नजर डालने जा रहे हैं। परमेश्वर की महान शक्ति उसका सृजनात्मक वचन है, जैसा कि हम पाते हैं बाइबल में लिखा है भजन संहिता 33:6 में और इब्रानियों 11:3 और इब्रानियों 1:3 पद में। भजन संहिता 33:6 में वर्णित सत्य पवित्र शास्त्र में परमेश्वर और उसकी शक्ति के बारे में सबसे सरल और गहन कथनों में से एक है। उत्पत्ति अध्याय 1 में हम इस दिव्य प्रक्रिया को बिना किसी स्पष्टीकरण के क्रियान्वित होते देखते हैं। प्रत्येक प्रथम दिन की शुरुआत इस अभिव्यक्ति से होती है और परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने ब्रह्मांड, इस संसार, मानव जाति की रचना करते समय किस पदार्थ का उपयोग किया, क्या आपको मालूम है? इसे हमें पता चलता है इब्रानियों 11:3 में पढ़ करके। यहाँ लिखा है 3 पद में, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। प्यारो, सारी वस्तुएं जो हम पृथ्वी में देखते हैं परमेश्वर के वचन से बना है। परमेश्वर कुछ नहीं लिया लेकिन सब कुछ को अपने सर्वशक्ति से बनाया। उत्पत्ति 2:7-20 में प्रथम मानव की रचना का वृत्तांत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और हवा को आदम की पसली से बनाया गया। इन उदाहरणों में परमेश्वर ने उस पदार्थ का उपयोग किया जो पहले से ही अस्तित्व में था। हालांकि प्रश्न बना रहता है, वह पदार्थ उदाहरण के लिए मिट्टी अंततः कहां से आया? इब्रानियों 11:3 के अनुसार हम विश्वास से समझते हैं कि ब्रह्मांड परमेश्वर की आज्ञा से रचा गया, इसलिए जो दिखाई देता है वह दृश्यमान से नहीं बना था। इब्रानियों के लेखक के लिए यही सबसे अच्छा तरीका था जिससे वह कह सके कि परमेश्वर ने ब्राह्मण को शून्य से बनाया। इस एक साधारण कथन में इब्रानियों के लेखक ने परमेश्वर के इस दावे को प्रमाणित किया कि वह ही इस ब्राह्मण का एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जिसे हम पढ़ सकते हैं बाइबल में पहला इतिहास 16:24-27 में। भजन संहिता 96:5-6 में कहता है कि परमेश्वर ही ने हमें बनाया है, हम अपने आप से नहीं आए हैं। यशायाह 40:18-26 में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ही सबका सृष्टि करता है, उसके समान और कोई नहीं है। यशायाह 42:5-9-44 में भी हम ये बातें पाएंगे। जरा सोचिए, परमेश्वर ने इस संसार को यूं ही नहीं बनाया, ना ही इसे घड़ी की तरह घुमाकर छोड़ दिया। परमेश्वर कोई विमुख देवता नहीं है जिसने अपनी सृष्टि से मुंह मोड़कर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया हो। वह अपनी सामर्थ के वचन से सब वस्तुओं को संभालता है। इब्रानियों 1:3। प्रकाशित वाक्य 11 का 18 हमें दिखाता है कि परमेश्वर इस बात को गंभीरता से लेता है कि लोग उसकी सृष्टि के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सृष्टि का देखभाल करें जो वो हमारे लिए हमारे सामने दिया है। हम मसीह के सामने जो मानते हैं कि प्रभु जल्द ही आ रहे हैं, एक चुनौती है। पृथ्वी की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर प्रभु जल्द ही आकर इस ग्रह को नष्ट करने वाले हैं तो हमें इसकी देखभाल करने की जहमत क्यों उठानी चाहिए। ईसाई जीवन में कई ऐसे काम हैं जो ऊपरी तौर पर भले ही निष्फल लगे, लेकिन परमेश्वर हमें उन्हें करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें करना सही है। उदाहरण के लिए प्रार्थना को ही लीजिए। अगर परमेश्वर सब कुछ जानता है तो प्रार्थना क्यों करे? क्या उसे पहले से ही नहीं पता कि किसे मदद की जरूरत है? या अगर परमेश्वर हमें नए शरीर देने की वादा करता है तो हमें अपने शरीर की देखभाल क्यों करनी चाहिए? प्यारो, हमें परमेश्वर जो कहा है उसको करना है, जो सही है उसको करना है। हालांकि परमेश्वर हमें बहुत कुछ अच्छे चीज आने वाले समय में देने वाला है, हमें जो इस समय दिया है उसको हमें संभाल कर रखना है, उसे हमें अच्छा से रखना है। बहुत कम लोग पशुओं के साथ व्यवहार करने या उन्हें उपेक्षा से पीड़ित होने के लिए छोड़ने के पाप को समझते हैं। एक रिकॉर्ड स्वर्ग तक जाता है और वह दिन आ रहा है जब उन लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा जो ईश्वर के प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बहन एलन वाइट कहती है इसे पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स पृष्ठ 443 में। इसलिए प्यारों, हमें पशुओं और जानवरों पर दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, परंतु उस पर भी हमें दया और प्रेम दिखाना चाहिए क्योंकि वे परमेश्वर के सृजे गए जंतु हैं। बाइबल हमें याद दिलाती है कि सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसे हम पा सकते हैं भजन संहिता 104 का 10-23 में। परिस्थिति की संबंधी चिंताएं एक आधुनिक घटना है। ये तब सामने आई जब कुछ दूरदर्शी वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि हमारी आधुनिक तकनीक हमारी पृथ्वी को नष्ट कर रही है। परिस्थिति की ये अध्ययनों से पता चला है कि सभी जीवन एक दूसरे पर निर्भर हैं। पर्यावरण के किसी एक घटक को नष्ट या बाधित किए बिना पूरे परिस्थिति की तंत्र पर इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। फिर भी परिस्थिति की के सिद्धांत कि कैसे चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं, बाइबल में हम पाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में सभी चीजें घोषणा करती हैं कि जीवन का महान नियम सेवा का नियम है। अनंत पिता हर जीवित चीज के जीवन की सेवा करते हैं। सेवा का एक ही नियम प्रकृति में सभी चीजों पर लिखा है। हवा के पक्षी, मैदान के जानवर, जंगल के पेड़, पत्ते, घास और फूल, आकाश में सूरज और प्रकाश के तारे, सभी की अपनी सेवा है। झील और सागर, नदी और पानी का झरना प्रत्येक देने के लिए लेता है। ईश्वर की समस्त सृष्टि सेवा और जवाबदेही के महान नियम को प्रकट करती है। यह नियम आपके जीवन में किन तरीकों से प्रकट होता है? अपने आसपास या आंगन में प्रकृति के लिए आश्रय और वन्य जीवों के लिए एक अभयारण्य प्रदान करने के रचनात्मक तरीकों के बारे में आप जरा सोचिए। आज्ञाकारिता के बारे में प्रकृति हमें क्या सिखा सकती है? इसे हम पाएंगे अय्यूब 38 का 11, भजन संहिता 104 का 9, लूका 8 का 24 और 25 में। प्यारो, प्रकृति अपने रचियता की आज्ञाकारी है। उदाहरण के लिए देखें कि कैसे गहरे सागर के विशाल जल उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन करते हैं और कैसे विशाल महासागरों की अभिमानी लहरें उसके सामने नतमस्तक होती हैं। प्रचंड तूफान उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्राकृतिक जगत की विभिन्न वस्तुओं से सीख ये है कि वे अपने रचयिता की इच्छा के आज्ञाकारी हैं। वे कभी भी ईश्वर का इनकार नहीं करते, उनकी इच्छा के किसी भी संकेत का पालन करने से कभी इनकार नहीं करते। आप कल्पना कीजिए कि जब प्रकृति अपने रचयिता से उत्पन्न हुई थी तब वह कितनी सुंदर थी। आज प्रकृति का सबसे सुंदर दृश्य भी उसकी तुलना में तुच्छ हो जाता है। फिर भी हम उसकी भव्यता का आनंद लेते हैं और उसकी पर्वत चोटियों, विशाल महासागरों, फूलों से लदे घास के मैदानों और कल कल बहते झरनों में उसकी अच्छाई और महिमा देखते हैं। उनकी दुर्दशा के बावजूद हम अभी भी उस महान रचनाकार के सुंदर चिन्हों को पहचान सकते हैं। यदि अपूर्ण प्रकृति हमें इतना आनंद दे सकती है और हमारे हृदय को परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रेरित कर सकती है तो प्रकृति कितना लाभदायक है। यीशु का प्रकृति से क्या संबंध है, इसे हम सीख सकते हैं लूका 5:16, लूका 6:12 और यूहन्ना 6:15 से। हम जानते हैं कि यीशु अपने पिता से प्रार्थना करने और उनसे संवाद करने के लिए प्रकृति की ओर आकर्षित हुए। उन्हें भीड़ भाड़ से दूर ईश्वर के साथ अकेले रहने की जरूरत महसूस हुई। पिता के साथ एकांत ने उन्हें भीड़ की सेवा करने के लिए तैयार किया। अगर मसीह को प्रकृति की शांति में अपने पिता के करीब आने की जरूरत थी तो हमें भी जरूर है। यीशु ने अपने शिष्यों को प्रकृति में अपने साथ अकेले रहने के लिए आमंत्रित किया। इसे हम पढ़ते हैं मरकुस 6:31 में। आराम और परमेश्वर पर भरोसा एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करना उस पर सच्चा भरोसा करना है। विश्राम, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, परमेश्वर की कृपा पर भरोसा करने से जुड़ा है। विश्राम पुनर्स्थापना से जुड़ा है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमेश्वर के स्वर्गीय विश्राम में प्रवेश करने के लिए तैयार होने हेतु हमें पहले यहाँ उसके विश्राम में प्रवेश करना होगा। जब हम उत्पत्ति 2:15 और 3:23 का अध्ययन करते हैं तो हमको पता लगता है कि परमेश्वर क्यों चाहता था कि आदम पतन से पहले और बाद में प्रकृति में काम करे। प्रकृति में कार्य करने से हमें निरंतर हमारे सृष्टिकर्ता और उद्धारक की याद होती है। जब हम बीमार होते हैं तो प्रकृति के संपर्क में रहना हमारी मदद करती है। बीमार लोगों को प्रकृति के निकट संपर्क में लाना जरूरी है। प्राकृतिक परिवेश में एक बाहरी जीवन कई असहाय और लगभग निराश विकलांग लोगों के लिए चमत्कारी साबित हो सकती है। शुद्ध हवा और पानी, स्वच्छता, उचित आहार, जीवन की शुद्धता और ईश्वर में दृढ़ विश्वास उस अभाव का इलाज है जिसके कारण हजारों लोग मर रहे हैं। टेस्टिमनीज फॉर द चर्च खंड 5 पृष्ठ 443 में हम यह बात पाते हैं। परमेश्वर की उपचारक शक्ति संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त है। यदि कोई पेड़ काटा जाता है, यदि कोई मनुष्य घायल होता है या उसकी हड्डी टूट जाती है तो प्रकृति तुरंत उस चोट की मरम्मत करना शुरू कर देती है। आवश्यकता उत्पन्न होने से पहले ही उपचारक शक्तियां तैयार रहती हैं और जैसे ही कोई तीर घायल होता है प्रत्येक ऊर्जा पुनर्स्थापना के कार्य में लग जाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है प्यारो। पाप द्वारा आवश्यकता उत्पन्न करने से पहले ही परमेश्वर ने उपचार प्रदान कर दिया है। प्रत्येक आत्मा जो प्रलोभन के आगे झुक जाती है, विरोधी द्वारा घायल और कुचली जाती है, परंतु जहां कहीं भी पाप है वहां उद्धारकर्ता भी आया है। टूटे हुए हृदयों को चंगा करना मसीह का कार्य है। शिक्षा की पुस्तक पृष्ठ 113 में हम पाते हैं। प्यारो, ईश्वर की दूसरी पुस्तक प्रकृति के साथ समय बिताना जरूरी है। जब हम प्रकृति में होते हैं तो हम उनकी सृष्टि की भव्यता को देखकर और उनकी वाणी को हमसे बात करने देकर ईश्वर के और करीब आ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ईश्वर की रचना का एक हिस्सा है और हमें एक उपहार है, इसलिए इसकी रक्षा और संरक्षण करना हमारा दायित्व है। प्यारों, आइए हम परमेश्वर को उसके प्रकृति के लिए धन्यवाद दें जिसके द्वारा हम उसके नजदीक आ सकते हैं। प्रकृति परमेश्वर का महिमा करती है, आइए हमारा हृदय में भी हम उसका महिमा करें और प्रकृति के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आएं। परमेश्वर आपके साथ रहे और परमेश्वर आपको भला चंगा और कुशल रखे, परमेश्वर आपको आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू हमारा सृष्टि करता है और सृष्टि में हम जो कुछ देखते हैं तू हमारे अच्छाई के लिए, हमारे भलाई के लिए बनाया है। पिता परमेश्वर, हमें मदद कर, तेरे इच्छा के मुताबिक हम उसका देखभाल रखवाली करें और तेरे नज़दीक आए और हमारा जीवन तेरा महिमा के लिए हो। पिता परमेश्वर, हमें तेरे निकट ला, मेरे हर एक श्रोताओं को भी, उनके परिवार के साथ उन्हें आशीष दे, समुद्र के राज के लिए तैयार के नाम से सोना ग्रहण करें। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।